जैसे ही अयांश ने तुम कहा, आरवी ने फट से उसकी ओर देखा, पर अयांश के चेहरे पर उस वक्त कोई भाव नहीं था, मानो उसने खुद को संभाल लिया हो। बेशक आरवी की बातों में खोकर उसने तुम कह दिया हो, पर उसने आरवी को अपने भावों की भनक तक नहीं लगने दी। लगने भी कैसे देता? अयांश मेहरा अपने भाव छिपाने में माहिर था, या कहें तो उसे जाहिर करना नहीं आता था, या करना नहीं चाहता था। वजह थी आरवी के लिए उसकी नफरत। तभी वो आरवी की ओर घूरते हुए बोला, क्या बकवास कर रही हो, जितना पूछा है उतना जवाब दो। आरवी मुस्कुराते हुए बोली, जितना पूछा है उतना ही जवाब दिया है। अभी मैंने जो कहा वो अभिनव के लिए महसूस करती हूँ। अभिनव के लिए वर्तिका वैसी ही है, वो उसके लिए यहाँ है, वो उससे प्यार करता है। उम्र में भले वो वर्तिका से छोटा हो, पर वर्तिका को चाहने में उसने कमाल कर दिया, यानी कि दो नहीं चार कदम आगे निकला, आशिक नंबर वन। हंसते हुए, साथ हो आपकी मोहब्बत तो उसे हर कोई चाह ले, पर उसके जाने के बाद भी उसे चाहते रहना, ये कोई आम बात नहीं होती। अभिनव की ज़रूरत वर्तिका को भी और मुझे भी है, ताकि आपके दिए टाइम पीरियड में मैं उसे जल्द ठीक करने की कोशिश कर सकूं। आई होप अब आपको समझ आ गया हो कि अभिनव मतलब अभी यहाँ क्यों है और वो अब यहीं रहेगा, ओके? मुस्कुराते हुए, वो यहाँ रहेगा, ये घर है मेरा, समझी? कोई धर्मशाला नहीं। फिलहाल अपनी बहुत चलाने लगी हो तुम, इसका ये मतलब नहीं कि अपनी सब चला पाओगी, अयांश दांत भींचते हुए बोला। यहाँ आपका दोस्त रह सकता है तो मेरा क्यों नहीं? वैसे भी झोपड़ी थोड़ी है, महल जैसा बड़ा घर है। रूम नहीं तो कोई बात नहीं, वो यहाँ सोफे पर भी रह लेगा, कोई शिकायत नहीं होगी उसे। बाकी रिश्ते से जीजू हैं, मान सम्मान देंगे तो आपका ही बड़प्पन। मैं बिना, ये कहाँ पॉसिबल है, आपके हाथों जो बिल्कुल नहीं। एनीवे, एक कोना घर का काफ़ी होगा उसे। वर्तिका से मतलब है ना कि आपकी धर्मशाला से या किसी ऐशो आराम से? वो एडजस्ट कर लेगा, बट रहेगा यहीं एक महीने तक तो। और हाँ, ना आपकी चल रही ना मेरी, यहाँ बड़े मिस्टर मेहरा की चल रही है। उनकी परमिशन से ही अभी यहाँ आया है और यहीं ठहरेगा, ओके? तुम मेरे दादू का यूज़ नहीं कर सकती हो, अयांश आरवी को उंगली दिखाते हुए बोला। कि तभी आरवी ज़ोर से बोली, देखिए ना दादाजी क्या कह रहे हैं ये। ये सुनते ही अयांश ने दिनकर जी के कमरे की ओर देखा, जहाँ कोई नहीं था। इतने में आरवी दूसरी ओर से निकल गई। आरवी को वहाँ से भागते देख अयांश तमतमा गया और उसे जाते देख मुट्ठी भींच कर बोला, छोड़ूंगा नहीं तुमको तो मैं, बस बहुत हुआ, आज के आज तुम्हारे किए का अवार्ड तुम्हें दूंगा। ऐसी सज़ा जो अगली बार मेरे साथ कोई भी हरकत जो मुझे पसंद नहीं वो करने से पहले चार बार सोचने पर मजबूर हो जाओगी तुम कि करूँ कि नहीं। बेचारा अयांश अब ज़्यादा घर में चिल्ला भी नहीं सकता था, ना आरवी पर गुस्सा दिखा सकता था। वजह थी वर्तिका का होना, अयांश के अकॉर्डिंग जिसका आरवी खूब फ़ायदा उठाकर अपनी पूरी मनमानी कर रही थी। पर अयांश सूद समेत बदला लेगा, इस सबसे वो अभी अनजान थी। हकीकत यही थी कि अयांश मेहरा से जीतना किसी के बस की बात नहीं थी। बेशक आरवी हिम्मत रखती थी अयांश से भिड़ने की, उसे जवाब देने में, पर अयांश भी अपने सामने लोगों को झुकाने और उनका मुंह बंद करने में माहिर था। सिर्फ खुद से उम्मीद रखने वाला और जिद पर जीने वाला अयांश मेहरा अब आगे क्या करेगा, जिसका हर्जाना आरवी भुगतेगी, ये सिर्फ वो जानता था। क्योंकि अयांश ने मन बना लिया था आरवी को आज मज़ा चखाने का, जो उसे वाकई में हल्के में ले रही थी, और ये अयांश से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उधर आरवी सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, शुक्र है भाग आई, वरना उनके चक्कर में मेरा दिमाग गर्म और खाना ठंडा हो जाता। और मैं कहाँ यूज़ कर रही हूँ दादाजी का, मैं तो उनकी आज्ञा से काम कर रही हूँ। खैर, उनकी सोच वो जाने, वैसे भी उनसे अच्छे सोचे मेरे बारे में ऐसे की उम्मीद कभी की भी नहीं जा सकती है। वैसे अच्छा है ना, जब से वर्तिका आई है इनका चिल्लाना बंद हो गया, गुस्सा भी थोड़ा करके रह जाते हैं। करे भी क्या, बेबस जो हो गए, वरना काँव-काँव से इनकी मेरे तो कान दुखने लगते। पर आरवी बचकर, घायल शेर जब वार करता है तो बहुत खतरनाक होता है, कहीं तुम इनकी बैंड बजाने के चक्कर में खुद ना पिस जाएं। है ही डेविल, कोई भरोसा नहीं। बप्पा रक्षा करना, हिम्मत देना जो खुद को बचा सकूं। करूं भी क्या, जब सामने आते हैं तो उन्होंने जो किया है मेरे साथ उसको लेकर भड़ास निकल जाती है और जबान फिसल जाती है। मन तो भर भर कर सुनाने को करता है, पर मैं तो थोड़े में बस कर जाती हूँ। ये भी सच है, अक्कर चंद जी को मेरा ऐसा करना रास नहीं आता, पर मैं गलत तो नहीं कहती। बप्पा कुछ पर वो क्या जाने, सच सुनने की आदत जो नहीं है। एनीवे, जान है मुझको प्यारी, जिसके लिए दूरी बनाकर रखनी है ज़रूरी, ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। तभी अचानक विनीत आरवी के सामने आ गया। संभल कर विनीत जी, उनसे बचा कर लाए हैं आप, गिरा देंगे क्या आप खाना, आरवी ट्रे संभालते हुए बोली। ये सुन विनीत ने रेलिंग के पास होकर नीचे खड़े अयांश की ओर देखा, जो कि मुट्ठी भीचे खा जाने वाली निगाहों से वहीं ऊपर की ओर ही देख रहा था। आरवी, आप लेंगे कुछ? लेना हो तो राधे भैया को बोल दीजिए, ये तो हम आपके दीजू के लिए ले जा रहे हैं। विनीत, हो गया तुम्हारा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब ये बताओ क्या किया तुमने जो वो गुस्से में है। ये सुन आरवी ने नीचे खड़े अयांश पर नज़र डाली, कुछ भी तो नहीं, और वो गुस्से में होते कब नहीं विनित जी, जो आप उनको गुस्से में देख इतने हैरान हो रहे हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि वो 24 घंटे में 18 घंटे तो गुस्से में ही होते हैं, बाकी के 6 घंटे सोने के। तब वो जाने क्या पता नींद में भी एंग्री मैन बने रहते होंगे। एक मक्खी आकर बैठ जाए उनकी नाक पर तब वो आग बबूला हो जाएंगे, और उनका बस चले तो हाथों हाथ भस्म कर दें उसको। वो तो किस्मत अच्छी है, फुर हो जाती है बेचारी, वरना उन पर अब तक ना जाने कितने मर्डर के केस बन जाते। काश मैं भी मक्खी होती जो ना तो उनके हाथ आती और ना उनके इस कैदखाने बेचैद होती। उनके मुझ तक आने से पहले फुर हो जाती तो आज जिंदगी कुछ और ही होती। गंभीर होते हुए ये सुन विनित एक टक आरवी की तरफ देखने लगा। वो कुछ कहने को हुआ कि आरवी फिर बोल पड़ी, एनीवे जाकर अपने दोस्त और बॉस को संभालिए, गुस्सा काबू में ना हो तो बाहर का रास्ता दिखा दीजिए, यहाँ तो अलाव नहीं है, वजह आपको पता ही है। अब मैं चली, आप भगत कर लूं आपकी दीजो की, हक तो आपका बनता है, पर आपको तो फुर्सत ही नहीं मिस्टर मेहरा के नक्शे कदमों पर चलने से। इतना कहे आरवी वहां से चली गई। विनित नीचे आया तो अयांश उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, तुझे भी भाषण सुनाकर चली गई क्या? विनित हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तो आदत है सबकी सुनने में, चाहे तेरी हो या तेरी उसकी, वैसे किसी की ना सुनने वाले को भी कोई सुनाकर चला जाता है, ताजुब की बात है ना। ये सुन अयांश का गुस्सा और बढ़ गया, वो विनित की तरफ छपटते हुए उसकी कॉलर पकड़ता है कि विनित इधर उधर देखते हुए बोला, ये घर है अयांश? इतना सुनते ही अयांश ने उसे झटकाकर छोड़ दिया, जानता हूँ घर है और इसका ही फायदा सब उठा रहे हो। विनित अपनी कॉलर सही करते हुए बोला, ये सब छोड़, मुझे और अपनी बीवी को बाद में बता देना जो भी बताना हो, फिलहाल अपनी वाइफ पर जो गुस्सा है उसको साइड में रख, दूसरी ओर ध्यान दे, लॉयर का कॉल आया है, अभी के अभी हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। ये सुनते ही अयांश ने फट से विनित की ओर देखा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। तो चलो कहते हूँ, अयांश तेजी से बाहर की ओर बढ़ गया, विनित भी उसके पीछे पीछे तेजी से चल दिया।
पुलिस स्टेशन के स्पेशल डिपार्टमेंट के एक रूम में अयांश आंखों पर चश्मा लगाए चेयर पर बैठा था। सामने की टेबल पर उसने पैर फैलाकर एक पैर के ऊपर अपना दूसरा पैर रखा हुआ था। विनित भी उसकी पास वाली चेयर पर बैठा था। अयांश के ठीक सामने वकील साहब हाथ में फाइल पकड़े खड़े थे, और उसकी बगल में इंस्पेक्टर साहब खड़े थे, जिनकी नज़र कभी अयांश पर तो कभी रूम के दरवाजे पर थी। तभी अयांश ने अपने हाथ में बंधी घड़ी की ओर देखकर विनित की ओर देखा, तो विनित थूक निकलते हुए इंस्पेक्टर की ओर देखते हुए खड़े होकर बोला, ये क्या है इंस्पेक्टर साहब, आप जानते हैं ना अयांश मेहरा का एक एक पल कितना कीमती है। वकील साहब, आपकी एक कॉल पर हम चले आए, आप भी वाकिफ हैं, इंतज़ार करना इनको पसंद नहीं। अयांश की ओर देखते हुए, वक्त के कितने पाबंद हैं मिस्टर मेहरा, फिर भी पिछले 7 मिनट से आप हमें वेट करवा रहे हैं, जबकि हमारे आने से पहले सक्षम वालिया यहाँ हमारे सामने मौजूद होना चाहिए था। कहा था ना आपसे काम जल्द से जल्द होना चाहिए, एक छोटे से काम में इतना टाइम वेस्ट क्यों करना। वकील साहब अयांश की ओर देखते हुए बोले, सॉरी सर, ये काम मैं भी जल्द ही करवाना चाहता हूँ, बिना आपका टाइम वेस्ट किए और ढील बरती हुए। अयांश बिना उनकी तरफ देखे बोला, तो जो आप चाहते हैं वो हो क्यों नहीं रहा है, मुझे तो आपका जल्द दिखाई नहीं दे रहा है। आपके पास सिर्फ 3 मिनट है, 10 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर मैं यहाँ नहीं रुकने वाला, फिर मेरी स्टेटमेंट के लिए आपके हिस्से में इंतज़ार आएगा, तिरछी मुस्कान होठों पर लाते हुए। ये सुन विनित वकील इंस्पेक्टर तीनों ने फट से एक साथ अयांश की ओर देखा, और विनित बोला, अयांश इस काम में हम और देरी नहीं कर सकते हैं, ये कोई मीटिंग नहीं, सक्षम वालिया के खिलाफ केस है, जिसके चलते ये मीटिंग पोस्टपोन नहीं हो सकती है। अयांश तीनों की तरफ एक नज़र देखकर बोला, 2 मिनट, कहाँ है सक्षम वालिया? विनित इंस्पेक्टर की ओर देखते हुए बोला, इतना टाइम क्यों लग रहा है उसे सलाखों से निकालकर इस रूम में लाने में इंस्पेक्टर साहब, थोड़ा चिल्लाते हुए। तभी इंस्पेक्टर साहब ने अयांश की ओर देखा, जो अपने फ़ोन को सामने करके उस पर अंगुलियां चला रहा था। अपने माथे पर आई पसीने की बूंदें पहुँचते हुए बोला, जानता हूँ सर आपका कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है, पर सेफ्टी और निगरानी के लिए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए आपके आने के बाद ही सक्षम वालिया को जेल से बाहर लाने का सोचा, पहले रिस्क नहीं ले सकते हैं। बीते 2 दिनों में सक्षम वालिया नाम के मुजरिम ने बहुत तंग किया है पूरे स्टाफ को, 2 बार भागने की कोशिश कर चुका है, दूसरे इंस्पेक्टर को दबोच लिया था, हवलदार को भी चोट पहुंचाई, वकील साहब ने आपको बताया ही होगा ना, तभी उसे कड़ी निगरानी में रखने के लिए दूसरी बड़ी जेल भेजने के लिए आपकी स्टेटमेंट की जल्द से जल्द हमें ज़रूरत पड़ी, इस केस को और होल्ड पर रखना सही नहीं लगा, आप भी जल्द चाहते हैं मुजरिम को सज़ा मिले, पर 2 दिन से आप बिजी थे, इसीलिए आज विनित जी से बात कर मीटिंग रखी गई, ताकि सक्षम वालिया के केस को आपकी स्टेटमेंट से स्ट्रांग बनाकर उसे कड़ी निगरानी में रखकर कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जा सके, जैसा कि आप चाहते हैं मिस्टर मेहरा। वकील साहब बोले, हाँ सर, और आज सक्षम वालिया शांत बैठा है कुछ, जब से मैंने बताया कि अयांश मेहरा आ रहे हैं, बस 2 मिनट मिस्टर मेहरा, सक्षम वालिया को लाया ही जा रहा है। तभी सबकी नज़र दरवाजे पर पड़ी सिवाय अयांश के। सक्षम सब इंस्पेक्टर और 2 हवलदारों के साथ मुजरिम वाले कपड़े और हाथों में हथकड़ी पहने अंदर आ रहा था। उसे देख विनित तिरछी मुस्कान होठों पर लाते हुए बोला, आ गया अयांश, तो कौन सा प्रधानमंत्री आया है या चीफ गेस्ट है जो मुझे उसका वेलकम या आरती करनी है।
अयांश ने बिना फोन से नजरें उठाई कहा। यह सुन विनित ने नामे सिर हिलाया। सक्षम को अयांश के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। तभी इंस्पेक्टर साहब ने दोनों हवलदारों को रूम से बाहर जाने का इशारा किया तो दोनों दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए और रूम बाहर से बंद कर दिया। तभी वकील साहब ने सब इंस्पेक्टर से कहा, इतना टाइम लगता है ना? सब इंस्पेक्टर, सॉरी, इसकी हरकतें तो मालूम है ना आपको, यहाँ से भागना चाहता है तो सिक्योरिटी का इंतजाम कर लाना पड़ा, सॉरी फॉर लेट। अयांश बिना सबकी तरफ देखे बोला, क्या बात है, एक सिर्फ एक मुजरिम को काबू रखने में कानून कमजोर पड़ा है। विनित, नहीं अयांश, यहाँ बात कुछ और है, वो है तुम्हारा डर, वरना इस मुजरिम को काबू रखना इतना मुश्किल नहीं, बस इन कानून के रखवालों को तुम्हारा डर कमजोर बना रहा है। सोच रहे होंगे थोड़ी सी लापरवाही, सक्षम हाथ से निकला, एक बार ही सही तो इनकी नौकरी, इनकी पोस्ट सब इनसे छिन जाएगा। सक्षम वालिया तो फिर पकड़ा जाएगा, पर इनके हाथ से इनकी वर्दी चली जाएगी। सही कहा ना वकील साहब, इंस्पेक्टर साहब? ये सुन वकील और दोनों इंस्पेक्टर अपनी नजरें झुका लेते हैं। तभी विनित सक्षम के पास आया, जिसको सब इंस्पेक्टर ने बाहर से पकड़ा हुआ था। उसका मुंह भी बांध रखा था, हाथ तो हथकड़ी से पहले ही बंधे थे। विनित ने पास आते ही मुस्कुराते हुए भौंहें उचकाई, क्या हाल सक्षम वालिया, नया माहौल रास तो आ रहा है ना? क्रमशः